तो आप सबको नमस्ते। हम हर मंत्र से पहले और जो तपस्या साधना मेडिटेशन करते हैं हर चीज में हम ओम बोलते हैं। अनेक बार इस पर चर्चा हुई होगी। तो ओम परमात्मा का नाम है ना, भगवान का नाम है। ऐसे तो भगवान के हजारों लाखों नाम हैं और हो सकते हैं, नए नाम भी बन सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी नाम होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी परमात्मा के हजारों सैकड़ों नाम है, पर ये ओम मुख्य नाम है। जैसे कि महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तस्य वाचक प्रणव, उसका उस परमात्मा का जो वाचक है जिसके द्वारा वो जाना जाता है या माना जाता है उसे ओम कहते हैं। जैसे हमारे आपका एक नाम है। ध्यान रखिए, कोई वस्तु है, कोई चीज है, सपोज ये घड़ी है, ये घड़ी एक वस्तु है, और ये वस्तु का जब तक हम नाम नहीं देंगे तब तक हम इससे यूजफुल नहीं बना सकते। तो इसको घड़ी बोलना पड़ता है, तभी मैं आपको घड़ी के बारे में कुछ बताऊं या कुछ इंस्ट्रक्शन दूं या कोई किसी को कुछ कर सके। तो हरेक का इसलिए एक नाम देना पड़ता है। वो कोई भी वस्तु हो, मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, मेरा और आपका नाम हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, फोन हो, उसका एक नाम है, फोन कहते हैं। तो परमात्मा एक एग्जिस्टेंस है जिसके लिए एक नाम देने की जरूरत है, और हजारों लाखों नाम है, और जितने भी नाम है वो सब कोई ना कोई परमात्मा के कोई ना कोई गुण या कर्म या कुछ कोई धर्म को वो डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। हम परमात्मा को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं क्योंकि वो सर्वव्यापक है ना। उसको विष्णु कहते हैं क्योंकि विष्णुर्व्याप्त वो सब जगह फैला हुआ है। शिव कहते हैं क्योंकि वो मंगलमय है। दुर्गा कहते हैं क्योंकि उसको पाना, उसके तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। दुहु गम्यते इति, उस परमात्मा का नाम गणेश है क्योंकि सारे संसार जो मास है उसका वो ईश है, स्वामी है, मास्टर है। तो आप नाम लेते जाइए, वो परमात्मा का कोई ना कोई एक गुण धर्म को बताता है, क्योंकि वो जेंडरलेस है, ना कोई उसका रूप है ना कोई शरीर है। तो कोई उसको पुलिंग में बोलते हैं, कोई फेमिनिन जेंडर में, कोई मैस्कुलिन जेंडर में, कोई न्यूट्रल जेंडर में। और उपनिषदों में तो मोस्टली परमात्मा न्यूट्रल जेंडर में यूज हुआ है। तो जैसा आप नाम डाल देते हैं, अगर वो नाम फेमिनिन वर्ड है, सरस्वती है, देवी है, दुर्गा है, तो वो परमात्मा, ये सब वेदों में परमात्मा के नाम होते हैं, तो वो स्त्रीलिंग में जाना जाता है। पुलिंग के शब्द डाल दें तो पुलिंग में जाना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे एक पर्टिकुलर नाम तो होता है, हमारे माँ बाप ने जब पैदा हुआ उसके बाद सर्टिफिकेट में एक नाम नोट करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, पर हर कोई हमें उस नाम से नहीं बुलाता है ना। आपके छोटे भाई बहन आपको भैया बहन या कुछ भी बुलाते हैं, कोई आपको अंकल बुलाता है, आंटी बुलाता है, कोई मौसी चाची मौसा चाचा मामा बुलाता है, कोई पापा बुलाता है, कोई मामा बुलाता है, कोई बेटा बुलाता है, कोई बेटी बुलाता है, पर आपका नाम तो कोई एक है। सपोज आपका नाम देवदत्त है, कितने लोग आपको देवदत्त करके बुलाते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, आपके अगर कोई आपके नीचे सबोर्डिनेट है तो वो आपको सर या जो भी जिस ये से बोलते हैं, आपकी पोस्ट से रिलेटेड आपको बोलते हैं, आपकी पत्नी या पति आपको कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं। तो हमारा जिस तरह के रिलेशनशिप है लोगों के साथ, जिस तरह के काम हम करते हैं, कोई डॉक्टर साहब है, कोई इंजीनियर साहब है ना, तो जिस तरह के हमारे प्रोफेशन है, हमारे काम है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारे रिलेशनशिप है, उसके कारण हर व्यक्ति दर्जनों नामों से जाना जाता है। पर हमारा अपना एक नाम है जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, जब भी ऑफिशियल काम करते हैं तो उसी नाम से यूज करते हैं। इसी तरह परमात्मा को जो व्यक्ति जिस रूप में देखता है उसके जिस भी गुण को, धर्म को, स्वभाव को, पर्सनालिटी को जिस रूप से फील करता है, समझता है, मानता है, उसके लिए एक नाम डाल देता है। पर उसका अपना एक नाम है जो वेदों से लेकर ऋषि मुनि हर कोई उसको उसी नाम से एड्रेस किया है, उसके बारे में डिस्कशन किया है, और वो नाम है ओम। और ये जो ओम नाम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। अब है तो एक छोटा सा, कुछ लोग इसको साउंड बोलते हैं, कुछ इसको सिलेबल या कोई अक्षर बोलते हैं, कोई लोग इसके वर्ड या शब्द बोलते हैं, ये सब में फिट होता है। तो आज उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ओम का मीनिंग क्या है और ये क्यों ऐसा नाम है, चर्चा करेंगे। देवियों सज्जनों, जो मैटर होता है, मैटेरियल चीजें, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होती है, छोटा कण, जैसे आप एटम्स या एटम में भी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आप तो वो दूसरा भी बोसन या कुछ आ गया। इसी तरह जो चेतना है, जो कॉन्सियसनेस है, उसका जो सबसे सटलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, वो परमात्मा कहलाता है। ध्यान दीजिए। और जब हम जो लैंग्वेज, जो भाषा बोलते हैं, दुनिया में कोई भी भाषा, वो भाषा का जो सबसे सटलेस्ट फॉर्म होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, उसे हम नाद कहते हैं हमारे लिटरेचर में। तो जैसे स्मृति जी भजन गाती हैं, जो कलाकार हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से, संगीत से, मतलब जिनका काम है साउंड म्यूजिक, तो वो नाद की साधना करते हैं। नाद मतलब वो जो साउंड है। और जितने भी साउंड हैं, जो ध्वनि है, शब्द ध्वनि, उसमें भी जो सटलेस्ट फॉर्म होता है उसको ओम कहा गया। तो ये जो साउंड आपको दुनिया में हर जगह, वो मैटेरियल वर्ल्ड हो या इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके आवाज में आपको ये सुनाई देगा। दुनिया के हर मैटेरियल वस्तु में जब कोई साउंड निकलता है तो साउंड में आपको ओम सुनाई देगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, हम सब जानते हैं, अल्पर्वडिंग है, कण कण में है, तो उसका नाम भी हर कण कण से निकलना चाहिए ना। आप लोहा को ठुक कर देखो ना? किसी भी चीज को बजा के देखो, उसकी जो वाइब्रेशन की जो साउंड आएगी वो साउंड आएगी। आप स्पेस में जाओ, जो लोग स्पेस में गए, रिकॉर्ड करके भेजा है आपको, आप देखिए गूगल में आपको मिल जाएगा जो साउंड है, उसमें भी वो ओम की साउंड मिलेगा। तो संसार की हर वो वस्तु में और हमारे अंदर भी ओम का जो ध्वनि है वो 24 घंटे चलता है, तो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हम, हमारा सेंसेस माइंड बहुत सारी चीजों में बिजी है। कभी मन शांत करके बैठो, जब आपकी सेंसेस बाहरी दुनिया से कट जाए थोड़ी देर के लिए, मन शांत हो जाए, इवन आप मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो दुनिया भर के थॉट्स तो आता है, इवन तब भी जब आप शांत होते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। इसीलिए उसको कहा गया, हमारे जो योगी ऋषि लोग हैं उसके लिए एक शब्द देते हैं, अनाहत नाद। नाद कहते हैं साउंड को, अनाहत मतलब आहत कहते हैं चोट लगना। जो भी आप साउंड निकालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हिट करता है। इवन जो भी अ आ ई जो भी इन इनसे जो लैंग्वेज बनी है, या ए बी सी डी अंग्रेजी में, या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में जो भी अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं अल्फाबेट्स को मिला करके आप कोई ना कोई वर्ड यूज करते हैं, ये सारे अल्फाबेट्स आपकी वोकल कॉर्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो डेंटल है वो दांत को टच करते हैं। त थ द ध न जब आप बोलते हैं, है ना, जब आप प प ब भ बोलते हैं वो ओंठ टच करते हैं, जब क ख ग घ बोलते हैं वो थ्रोट में वाइब्रेशन होता है, कहीं तालू में वाइब्रेशन होता है, कहीं मूर्धा में वाइब्रेट होता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो पैटर्न तो सेम है, साउंड तो यूनिवर्सियल है, लैंग्वेज मैनिफेस्टेड है, लैंग्वेज मैनमेड है, पर जो साउंड है वो नेचुरल है और वो एक पर्टिकुलर जगह पर जब कोई चीज टच करता है, हिट करता है, तो कोई ना कोई साउंड निकलता है। तो आप बाहरी दुनिया में भी किसी को छूकर पीट करके देखिए, आवाज निकलता है। तो जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपके शरीर के इंटरनल पार्ट को टच करते हैं भैया, दो चीजें मिलते हैं तो वो साउंड निकलता है। पर जो ओम साउंड है, जो ओम की जो जो नाद स्वरूप है, जो जो साउंड के फॉर्म है, वो अनाहत, इसीलिए कि उसके लिए आपको किसी चीज की छूने की जरूरत नहीं। संस्कृत अल्फाबेट्स में, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज की जो जो अल्फाबेट्स हैं वो भी बड़े साइंटिफिक और नेचर के, जो साउंड के नेचर के बेस्ड हैं, तो उसमें जो पांच बेसिक वावेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, अ ई उ री ली, उसमें जो अ ई उ है ये तीनों अनाहत होते हैं। अब अ बोले उ, आपकी अंदर का कोई भी चीज कहीं टच नहीं करता, पर जब आप बोलते हैं क ख ग घ, आप देखिए कहीं ना कहीं कोई टच होता है ना, प फ ब भ, ट ठ ड ढ, कुछ भी, त थ द ध, च छ। तो जब भी आप अल्फाबेट्स कुछ बोलते हैं, कंसोनेंट्स खास करके, तो वो कहीं ना कहीं आपकी टच करता है, आहत होता है, अनाहत जो बिना टच करके निकले कोई, वो आपके अंदर कॉन्स्टेंटली चलता है, उसके लिए एफर्ट्स करना नहीं पड़ता है। जब भी आप शांत मन में जाते हैं आप इस अनाहत नाद को सुन सकते हैं, एंजॉय, सुन मतलब आप फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। और ये इतना नेचुरल साउंड है ओम, इवन जड़ जड़ चीजों के टकराने से तो वो साउंड आप सुन भी सकते हैं। इवन जो मनुष्य के अलावा जो दूसरे प्राणी हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी आवाज की भी आप नोट करें, वो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, कोई भी इवन पशु पक्षियों की, तो उनकी जो साउंड में जो एक साउंड आपको कॉमन मिलेगा वो होगा साउंड, दैट इज संस्कृत में उसको कहते हैं अनुनासिक ध्वनि, मीन्स हाफ नेजल साउंड। जो ओम में, जब ओम को बोलने के बाद जब आप वाइब्रेट करते हैं ना, ओम तो आप जो जोर से बोलते हैं तो वो ओम होकर निकलता है, जब आप इसको मन में ही जपने लगता है या उसको योग के अलग अलग विधि में प्रयोग करते हैं तो ये साउंड आपको सुनाई देता है। उपनिषदों में कहते हैं अणो रणियान महतो महियान, ये परमात्मा जैसे दुनिया के जो भी शटल चीजें हैं, अणु है, उससे भी शटल है, और महतो महियान, दुनिया में जो बड़ा से बड़ा चीज, सपोज ये आकाश है, उससे भी बड़ा परमात्मा है। इसी तरह ये जो ओम है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा हो सक बड़ा है। जैसे परमात्मा का कोई लिंग नहीं, जेंडर नहीं, उसकी कोई नंबर नहीं, वो एक ही है ना, 2, 3, 1, 2, 3, 4, वो एक ही है, उसके कोई आसपास कुछ भी नहीं है। इसी तरह इस ओम का कोई जेंडर नहीं, ये न्यूट्रल भी नहीं, ना ये मैस्कुलिन है ना फेमिनिन, ना न्यूट्रल है, इसको कहते हैं इनडिक्लाइनेबल वर्ड, जो जेंडरलेस, जो जेंडरलेस होता है उसी को फिर न्यूट्रल में भी उसी को काउंट करते हैं। संस्कृत के ग्रामर में जितने भी रूल्स लगते हैं वो ओम में, वो ग्रामरलेस में होता है, विभक्ति रहित है, क्योंकि वो अनचेंजेबल है। मंडुक के उपनिषद इसको कहता है अक्षर है, अक्षर समझते, अक्षर का लिटरेरी मीनिंग होता है जिसमें क्षरण ना हो, समथिंग विच इज वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ डिकेइंग, नेचर ऑफ डिकेइंग, जहां डिके करने का, नष्ट करने का, धीरे धीरे नष्ट होने का स्वभाव जिसके अंदर ना हो, उसको अक्षर कहते हैं। परमात्मा भी अक्षर है, और परमात्मा जिस नाम से जाना जाता है वो ओमकार भी अक्षर है, इनडिक्लाइनेबल है। इवन गुंगा भी बोलना चाहे तो भी, जिसकी बोलने की क्षमता नहीं है, जो डिफ एंड डम है, वो भी जो आवाज निकलेगा उसमें भी आपको ओम की ध्वनि मिलेगी। जब सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे दुनिया में, बोलने वाले लैंग्वेज तो मनुष्य के द्वारा बोली जाती है, और पशुओं को भी, प्राणियों के भी, एनिमल्स की भी अपनी लैंग्वेज है। तो जब लिविंग बींग कोई प्राणी रहेगा नहीं तो लैंग्वेज तो नहीं रहेगी, पर तब भी ये ध्वनि तो रहता है ना, साउंड तो रहेगा। तो साउंड इटर्नल है, जब तक साउंड है तब तक ओम की ध्वनि बनी रहेगी। इसीलिए ब्रह्म की तरह अक्षर है। हमारे ऋषि मुनि योगी तपस्या करते हैं, पूजा पुरोहित आचार्य जब हवन यज्ञ करते हैं तो ओम के साथ शुरू करते हैं, हर चीज को ओम के साथ शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ओम को रियलाइज करते हो, समझते हो अपने पार्ट ऑफ योग के या अपने आध्यात्मिक जर्निंग की, इसको बनाते हो, अपना साथी बनाते हो, तो धीरे धीरे अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब भी आप ओम बोलते हो आप क्या बोलते हो? आप परमात्मा का नाम लेते हो। अगर किसी का नाम रमेश है और मैंने रमेश बोला, तो रमेश जो वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल जिसका नाम रमेश है वही रिएक्ट करेगा। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अगर रमेश बोलूं सिर्फ वही व्यक्ति रिएक्ट करेगा ना जिसका नाम रमेश है, बाकी थोड़ी रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो उसका नाम है, उसी से आइडेंटिफाइड है। तो परमात्मा जिससे आइडेंटिफाइड वो क्या है? वो है ओम। जब हम ओम को अंदर रियलाइजेशन में ले आते हैं, अंदर आप रस से भर जाते हैं, रस समझते हैं, रिलीज आनंद, जो परमानंद से भर जाते हैं। वैसे तो करोड़ों लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ जपते रहते हैं, है ना। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। परमात्मा की जप करो तो उससे आपकी जो योग योग मार्ग है वो आसान होगा। बोले परमात्मा को कैसे जापे, उसका नाम क्या है? तो बोला ओम है, प्रणव, प्रणव ओंकार को कहते हैं। फिर कैसे जपे? तज्जपस तदर्थ भावनम, उसकी अर्थों को चिंतन करो, ओमकार का अर्थ को चिंतन करो और अपने मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट बनाओ। वैसे करोड़ों लोग करते हैं पर कभी वो फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम कोई चीज फिजिकली बहुत ज्यादा करते हैं, जो पिछले बार आप हैबिट से पढ़ रहे थे, हैबिट की तो फायदे बहुत है, पर जो नुकसान है वो आपके आपके पर्सनालिटी में, वो ऑटोमोशन में चला जाता है। और आप फील करे न करे, रियलाइज करे न करे, अपने आप वो होता रहता है। जैसे हम यहां देखते हैं, जैसे नॉर्मल लोग थैंक यू सॉरी, उसका कोई मीनिंग होता है? 90% थैंक्स मैन, 90% सॉरी मीनिंगलेस होता है। वैसे वो आदत है, हम ऑटोमोशन पर पना हुआ है, अभी बोल देते, गाड़ी चढ़ गई, कोई मर गया, सॉरी भाई, कोई मतलब होता है? आप किसी को परेशान करते हो, उसने बोला ये सॉरी, कोई सेंस बनता है? इसी तरह थैंक्स, क्यों? क्योंकि बोलते बोलते हैबिट पड़ गया, अंदर उसका रस नहीं जा रहा है, वो फीलिंग नहीं जा रहा है। इसी तरह जब जब हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी, जब हम सिर्फ फिजिकली करते हैं, अंदर को मन को उसके साथ जोड़ते नहीं है, हम उसको फील नहीं करते हैं, हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं, तो वो एक फिजिकल हैबिट की तरह हो जाता है, जिसका कोई सोशल बेनिफिट तो हो सकता है पर फिर इंटरनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है। इसी तरह ये ओम या परमात्मा के नाम को जपने वाले, आजकल तो बहुत हिंदुओं में भी कम बच गए हैं जो ओम के जपते हैं, सबकी अपनी अपनी गुरु बन गए और सब गुरु भगवान बन गए, सब गुरुओं ने अपना नाम दे दिया है कि इसको जपो। और सब महामंत्र बन गए हैं, है ना। तो ये तो फुली डेमोक्रेसी है, और आपसी जो कहते हैं ना वो राइट ऑफ फ्रीडम, तो हमारे हिंदुओं में तो इतनी ज्यादा फ्रीडम है, तो जितने लोग हैं उससे आधा गुरु हैं और सबके अपने महामंत्र हैं। खैर वो अलग बात है। तो कभी कभी जीवन भर जपते रहने पर भी वो आनंद हमारे अंदर इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि वो मशीन की तरह हम जपते हैं, जैसे बाकी कामों को मशीन की तरह करते हैं। जब हम दिल दिमाग दोनों को उसमें डाल देते हैं तब आप फील करते हैं, ओम के उस रस को फील कर पाते हैं। और एक चीज बात करके ओम की मीनिंग पर चलेंगे। और ये जो ओम है, दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन नहीं, मत पंथ पूजा पद्धति नहीं जिसमें ये ओम किसी ना किसी रूप में यूज ना होता हो। इंडिक रिलीजियंस में, मतलब भारत से पैदा हुए सारे रिलीजन में तो है ही, वैदिक धर्म से आगे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सब जगह ओम ही का सबसे, इवन बौद्ध परमात्मा को नहीं मानते तो भी वो ओम उनके लिए बहुत महत्व रखता है। पर इवन जो अब्राहमिक रिलीजन है, इस्लाम है, जुडाइज्म है, या क्रिश्चियनिटी है, या उनसे बने हुए, अब एक शब्द वो यूज करते हैं अपने गॉड के लिए, ये उनके शब्द है जो कि ग्रीक और रोमन भाषा से गया है। गॉड को डिफाइन करते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी सिएंट। कि प्रेजेंट, सिएंट और पोटेंट तो समझ में आता है, पावर, पोटेंट मतलब पावर, प्रेजेंट मतलब कहीं उपस्थित होना, सिएंस साइंस नॉलेज से आता है। ये ओमनी शब्द ढूंढिए उसकी उसकी कहां से निकला, किसी रोमन में, ग्रीक में, जो भी प्राचीन यूरोपियन लैंग्वेज है या अरबियन लैंग्वेज है, कहीं नहीं मिलेगा। उनको पूछो जाकर किसी इंग्लिश के एक्सपर्ट को, किसी यूरोपियन या किसी भी एक्सपर्ट को, ये ओमनी आपके यहाँ कहां से आया, आप बोल सकते तो ऑलमाइटी है ना, ऑल नॉलेज, ऑल, ये ओमनी पोटेंट कहां से आया, ये ओमनी उसी ओम का ही रूप है। और आप कहेंगे आप बड़े बड़े छोड़ने लग गए, कहां ग्रीक लैटिन है, कहां संस्कृत है। खैर वो अलग टॉपिक है, कभी आप लिंग्विस्टिक थोड़ा बहुत पढ़ें या गूगल में टाइप करें संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, आपको पता चलेगा कैसे यूरोपियन लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश नहीं, वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो हंगेरियन हो, वो स्पेनिश हो, कैसे उनके शब्द, उनकी लैंग्वेज में हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स वर्ड्स हैं जो संस्कृत से कैसे रोमन और ग्रीक में ट्रांसफर होते हैं, फिर वहां से कैसे उनकी एंशियंट जो लैंग्वेज में, फिर धीरे 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 मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज में आते हैं। और जो भारत के आसपास देशों हैं, डेफिनेटली उनमें उनका प्रभाव है। आज का टॉपिक नहीं है संस्कृत का क्या प्रभाव किस में है, जो रशियन लैंग्वेजेस से, जो जो पुराना जो सोवियत के जितने भी अलग अलग कंट्री बने, जो स्लोवाकियन कंट्रीज हैं, तो आप वहां संस्कृत के ज्यादा इन्फ्लुएंस देखेंगे। आप ईरान, अफगानिस्तान, वहां भी आपको ईरानी जो पर्शियन लैंग्वेज में भी आप देखेंगे संस्कृत का कितना इन्फ्लुएंस है, वो अलग बात है। तो इसीलिए ये समझना कि ये कहां ग्रीक लैटिन संस्कृत, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको लिंग्विस्टिक का थोड़ा ज्ञान हो, कैसे संस्कृत का इन्फ्लुएंस दुनिया में कहां कहां किस रूप में रहा। तो ओम का महत्व उनके धर्मों में भी किसी ना किसी रूप में, जब परमात्मा का वर्णन करते हैं आपको वो इन्फ्लुएंस दिखने लगता है। और अलग अलग स्क्रिप्ट में भी जो ओम लिखे जाते हैं, मैंने कोशिश किया कुछ उसके पाने के लिए, ये सब ओम जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए, मोस्टली तो ये अपने इंडियन सब कंटिनेंट में, जिसमें तिब्बत भी है, श्रीलंका भी है, सिंघल भी है ना, पर ये तो जो हमारे और इंडोनेशिया की जो जापानीज लैंग्वेज है, पर इसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारे देशों में ओम का और स्वस्तिक, जो आज आज का जिसका टॉपिक नहीं है स्वस्तिक, इसका चिन्ह आपको अलग अलग देशों में मिलेगा। तो वो जो ओमकार है, जो अलग अलग ये अलग अलग स्क्रिप्ट में, इसी ये देखिए ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ये सबसे कॉर्नर वाला, तो बाकी अलग अलग लिपि में ये होता है। अब आते हैं इसको समझने के लिए, इसकी मीनिंग क्या है। मांडुक्य उपनिषद में आता है, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वमंकार एव सच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्यंकार एव। जो कुछ भी प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट है, जो बन चुका है, बन रहा है या बनेगा, वो सब ओम है। जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी ओंकार है। जो भी ये तीनों काल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अलावा बियॉन्ड जो कालातीत है, विच इज बियॉन्ड द टाइम, वो भी वो परम वही ओंकार है। जब हम ओंकार कहते हैं, इसका मतलब ओम नहीं, ओम साउंड नहीं, ओम मतलब परमात्मा। तो ध्यान रखिए, जब परमात्मा कहते हैं आप समझ जाते हो कि ये गॉड की बात कर रहा है, पर जो ओम कहते हैं यही आपके दिमाग में घुसना चाहिए। ओम मीन्स, अगर ओम कहे कि इसका ट्रांसलेशन, ओम का मतलब क्या है, गॉड है। जैसे आप मुझे सूर्य नारायण के नाम से जानते हैं, मैं आपको अलग अलग आपके नाम से जानता हूं, इसी तरह परमात्मा का नाम ओम, जहां भी शास्त्र में ओम आए इसका मतलब क्या है, आउमा नहीं, इसका मतलब है कि परमात्मा। और ये जो ओमकार है, परमात्मा को समझने के लिए ओमकार का मीनिंग समझना जरूरी है, और उसके चार चरण, चार पाद, चार क्वार्टर के रूप में बताया गया। परमात्मा के भी चार चरण बताए गए और ओमकार का भी चार चरण बताए गए। ओम में चार सिलेबल है, परमात्मा की चार स्टेट्स हैं। और क्योंकि ये बताया कि सिर्फ ओम सिर्फ परमात्मा को ही नहीं समझाता, ये संसार में परमात्मा सब जगह है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये यूनिवर्स का भी जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एंड बियॉन्ड दैट, वो सबको इस ओम छोटा सा साउंड के द्वारा समझना है। तो ओमकार में तीन लेटर्स हैं, अ ऊ एंड अम। इंडियन लैंग्वेजेस में, बेसिकली संस्कृत से सारे इंडियन लैंग्वेजेस की जो 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 अल्फाबेट्स बने हैं, उसका जो पहला लेटर है वो है अ, जो वावेल स्वर है। और स्वरों में जो मिडिल लेटर है वो है ऊ। और इंडियन अल्फाबेट्स टेबल में जो कंसोनेंट है, जो 25 कंसोनेंट है, 25 कंसोनेंट्स हैं, उसकी जो लास्ट लेटर है वो है अम। अ प्लस ओ इजकल टू ओ, म जुड़ जाता है, बनता है ओम। ये तीन लेटर है, पर इसमें एक इनविजिबल लेटर है जिसकी चर्चा आज करेंगे, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो तीन विजिबल लेटर है, एक इनविजिबल लेटर है, टोटल फोर लेटर्स हैं। ये तीन विजिबल लेटर, तीन विजिबल स्टेट्स ऑफ यूनिवर्स, थ्री विजिबल स्टेट्स ऑफ आवर सेल्फ, हमारी लाइफ, और थ्री विजिबल स्टेट्स ऑफ परमात्मा। जो उस ओमकार में जो एक इनविजिबल लेटर है, वो इनविजिबल लेटर इस संसार का जो एक इनविजिबल स्टेट है, जो चौथा स्टेट है, जो जो फोर्थ स्टेट है, आत्मा का भी जो चौथी अवस्था है जो इनविजिबल है, परमात्मा के भी वो चौथी अवस्था जो इनविजिबल है, उसको डिनोट या कॉनोट या बताते हैं। तो पहले आकार को समझेंगे। जो पहला लेटर है वो आकार है, तो वर्णमाला में जो आकार होता है, पहले तो आ क्या है समझ लेते हैं, फिर चलेंगे। जो संस्कृत में जो आकार है, अस्वर, स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं, कंसोनेंट सारे डिपेंडेंट होते हैं। अ सारे अल्फाबेट्स का पहला लेटर है और कोई भी कंसोनेंट आप बोलें व्यंजन वर्ण अ के हेल्प के बिना, अ के सपोर्ट के बिना कोई भी कंसोनेंट बोला ही नहीं जा सकता। संस्कृत अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं। अगर सपोज आप इंग्लिश से ज्यादा फैमिलियर है इंग्लिश अल्फाबेट्स को देखेंगे तो कोई भी कंसोनेंट बिना वावेल के सपोर्ट में बोला नहीं जा सकता, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट रैंडमली बना है इसलिए उसकी कोई रूल नहीं। तो भी जो एक यूनिवर्सल रूल है वो हम बात करेंगे। पहले संस्कृत का देखते हैं, जैसे क ख ग घ जो भी अल्फाबेट्स हैं, जब आप क बोलते हैं तो क अपने आप में हाफ होता है, उसमें अ साउंड लास्ट में आता है, ख अ साउंड आता है, ग अ साउंड आता है। और रूल है, अब ये कोई संस्कृत का रूल नहीं, ये नेचुरल लॉ है, ये लॉ ऑफ नेचर है। कोई भी कंसोनेंट को जब भी आप बोलेंगे या तो उससे पहले कोई वावल लगाएंगे उसके बाद लगाएंगे, या तो आप बोलेंगे अक आप पहले लाएंगे क को पूरा क बोल लेंगे, या क जिसमें अ साउंड निकलेगा। ये तो संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत ज्यादा क्लोज टू नेचर है। जो वैसे मैनमेड लैंग्वेजेस हैं और जहां मैनमेड रूल्स हैं, सपोज इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, वहां वावेल्स जरूरी होते हैं। आ नहीं है तो कोई ना कोई वावेल है, ए तो एक वावेल है पर बी ब प्लस ई है, ई वावेल है, सी स प्लस ई है, ई वावेल है, डी ड प्लस ई, ई वावेल है, के क प्लस ए, ए वावेल है, एफ ए वावेल है, फिर फ आता है पहले आता है, एच ए वावेल है बाद में च आता है। मतलब या तो वावेल पहले हो या बाद में होने पर वो मिला हुआ होता है, दिखाई नहीं देता, पहले दिखाई देता है। इसी तरह जो जिन भाषाओं में किसी भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने का कुछ बिगड़ गया, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे, जैसे नॉर्थ इंडिया में वो कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर देते हैं, बालक हिंदी की जो स्टाइल है तो लिखते तो है ब आ बा ल क, वो जो क होता है आ उसमें मिक्स है, पर जो प्रोनाउंस करते हैं वो उसको शार्प कट करके बोलते हैं बालक राम। अब थोड़े साउथ में उसको आ को लंबा कर देते हैं रामा, है ना, तो आ कर देते हैं। ईस्टर्न में बंगाली वगैरह में थोड़े ओ साउंड ज्यादा आता है, जो आप थोड़े ज्यादा साउथ ईस्ट साइड में जाएंगे, सपोज आप उधर से म्यांमार थाईलैंड वगैरह जाएंगे देखेंगे उनके भी लैंग्वेज में भी वही ओकार का थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिलेगा। जैसे साउथ की साइड में जाएं तो आकार की थोड़ी ज्यादा यूज मिलेगा, नॉर्थ में जाओ तो वावल ही ड्रॉप हो जाता है, खास करके अ वावल ड्रॉप हो जाता है, पंजाबी में तो बीच के भी वावल ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब सुरेंद्र को बोला है ना, किसी का नाम सुखी सुखिंद्र है ना, बोले सुखिंदर, तो वो आगे पीछे बहुत सारे स्वर। खैर ये लैंग्वेज की अपनी नेचर है, कैसे लैंग्वेज पनपते हैं हम उसमें नहीं जा रहे, बस पॉइंट है अ अक्षर अ साउंड संस्कृत के सारे अल्फाबेट में समाये हुए हैं। आदिम फर्स्ट लेटर है और सभी वर्णमालाओं में वो फैला हुआ है। तो ओम का जो अ विच इज फ्रॉम आप्ति मीन्स अप्टेनिंग अ रीचिंग फैला हुआ आदिम बिंग फर्स्ट, जैसे अ अक्षर वर्णमाला का पहला अक्षर है और संस्कृत अल्फाबेट्स में बिना अ के उच्चारण में अ की सपोर्ट लिए कोई भी वर्ण उच्चारित नहीं हो सकता व्यंजन वर्ण, इसी तरह ओमकार का जो अ है वो उस परमात्मा को डिफाइन करता है। वो परमात्मा कौन, जो संसार से जब कुछ भी नहीं था तो वही अकेला था, वो पहला है, और संसार में जो कुछ भी है सबके अंदर वो परमात्मा फैला हुआ है। इसी तरह जो उकार है वो उत्कर्षात उभयत्वाच्च। तो संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वावेल्स हैं, मतलब हिंदी बंगाली तेलुगु सब में ऑलमोस्ट सेम ही वावेल होते हैं क्योंकि संस्कृत की फॉर्म है और आगे पीछे एक आधा कम है, पर उसमें जो जो ओरिजिनल वावेल्स होते हैं वो पांच होते हैं, अ उ री एंड ली, बाकी तो सब मिक्स होते हैं, अ प्लस अ आ बन गया, और आज इसको आप कहते हैं ई, जो कहते हैं बड़ी ई, वो एक्चुअली ई प्लस ई बड़ी ई बन गया, इसी तरह री 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 बन गया, उ बन गया, इस तरह अ प्लस ई ए बन गया, अ प्लस ए बन गया, तो ऑल दीज आर मेड, वो कंबाइंड होकर बनते हैं, ओरिजिनल तो पांच ही है। और ये पांच ओरिजिनल जो वावेल्स हैं उसकी जो मिडिल में जो है अ ई उ री ली, ये ली स्वर जो है बाकी इंडियन लैंग्वेज में नहीं है, उसमें जो थर्ड है वो है उ। तो पांच जो इंडिपेंडेंट स्वर है उनमें जो मध्य में बीच में रहने वाला वो उ होता है, और जो मिडिल में होता है वो बैलेंस बनाता है। परमात्मा सृष्टि के आदि में भी है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, जब प्रलय होगा तब भी वो होगा, और सृष्टि और प्रलय के बीच का जो स्टेज जो यूनिवर्स फॉर्म में है उसमें भी परमात्मा रहता है, बैलेंस बनाता है उभयत्वात्। जैसे अम साउंड व्यंजन व्यंजन माला का जितने भी वर्गीय वर्ण है, क्लासिफाइड 25 वर्ण होते हैं व्यंजन, कख ग उसको कहते हैं कुचुटू तुपू, मतलब फाइव वर्गाज, कु मीन्स कख ग चू मीन्स च च ज य, तू मीन त थ द ध न, टू मीन्स ट ठ ड ढ न, पू मीन्स प प व भ म, जो लास्ट लेटर है अम, जहां ऊंट आपका बंद हो जाता है ओम, इम्मा लास्ट लेटर है, मीति मिनति अपीति वा। जैसे म अम वर्णमाला का अंतिम लेटर है, वो अम जब परमात्मा को डिफाइन करता है, वो परमात्मा जो सृष्टि का अंत में भी वो होता है, जब कुछ नहीं होता है वही होता है, और सृष्टि का प्रलय भी वही करता है। और ओम का एक चौथा स्टेट है औम, तो समझ में आया, जो विदाउट एनी एलिमेंट होता है, ये क्या है, जब भी आप ओम बोलते हैं ओम, अच्छा कभी आप कोई अपने घर का कोई बर्तन हो ना, उसको थोड़े आवाज करिए, ऐसे करिए, टक करिए, किसी मेटल्स को लोहे को जोर से पिटिए, जैसे मंदिरों में घंटा होता है या घंटी होता है उसको पिटिए, तो उसमें एक आवाज होता है, धीरे 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 वो आवाज कम हो जाता है और उसकी वाइब्रेशन चलती रहती है काफी देर तक, उस वो साउंड नहीं रहता, अब वो वाइब्रेशन चलता रहता है। इसी तरह जब आप ओम बोलते हैं तो ओम अम के साथ तो वो तीनों लेटर की जो कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, पर उसके बाद एक हल्की सी वाइब्रेशन आपके अंदर बनी रहती है। आप कैसे ओम को उच्चारण करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने देर तक रहता है, 2 सेकंड के लिए रहता है, 2 मिनट तक के रहता है। तो अगर आप ओम लंबा खींचते हैं तो लंबा वाइब्रेशन होगा, आप चुप सीधे ओम बोल देते हैं तो हल्की वाइब्रेशन होगा, तो एक हल्की सी वाइब्रेशन बना रहता है। वो कोई लेटर तो है नहीं है, पर स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द ओम साउंड। ये बाकी शब्दों में नहीं होता है, क्योंकि ये ओम यहां वावेल एंड है, इसीलिए वाइब्रेशन, और ये नाजल है इसीलिए वाइब्रेशन रहता है। वो जो वाइब्रेटिक जो स्टेट है जो कि इनविजिबल है, वो उस ओम नामक जो अक्षर है उसकी 4 स्टेज है। इसी तरह परमात्मा सृष्टि में भी है, एज ए क्रिएटर, जब सृष्टि बनी हुई होती है बीच में तब भी वो रहता है केयर टेकर, पालन करता, और जब सृष्टि नष्ट होता है प्रलय करता, डिजॉल्वर के रूप में भी परमात्मा रहता है। पर परमात्मा की एग्जिस्टेंस सिर्फ संसार से रिलेटेड नहीं है, संसार जितना है परमात्मा उससे बहुत बेंड है। जैसे पुरुष सूक्त में आता है कि ये जो संसार है चलिए ये कहीं रह गया। चलिए त्रिपादस्योर्ध्वं पादोस्याभवत् पुनः पुरुष सूक्त ऋग्वेद में आता है कि परमात्मा का सिर्फ एक क्वार्टर जो है पूरे संसार को, ये जो पूरा संसार है द होल कॉस्मस, वो संसार का सिर्फ वन क्वार्टर है। जो कुछ भी संसार में घट रहा है कॉस्मस में, सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, बन रहे हैं, मर रहे हैं, नया पैदा हो रहे हैं, प्लैनेट्स के जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसका वन क्वार्टर है। उसका जो थ्री क्वार्टर है वो इनविजिबल, परे है, संसार से परे है। और उसी वही परमात्मा की जो चौथा पाद जो अदृश्य है, अव्यक्त है, उसी चीज को वो बताने की कोशिश करता है। और ये जो ओमकार है ये सिर्फ परमात्मा की को ही डिफाइन नहीं करता, परमात्मा के सृष्टि में हर चीज की जो चार स्टेट्स हैं उन चार स्टेट्स को वर्णन करता है। वो चार स्टेट्स को तो बाद में समझेंगे कि जो ओम अपने आप में एक साउंड है, इट्स पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज को समझते हैं। हमारे जो शब्द है वर्ड, इसकी भी चार स्टेट्स होते हैं। हमारे शास्त्रों में इसको कहते हैं वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। वैखरी जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, जब मुंह खोल के हम बात करते हैं, ये किसी भी शब्द का वैखरी स्टेट है, इसका नाम है वैखरी। मध्यमा जब आप मुंह खोल के नहीं बोलते पर आपके अंदर बातें चल रहे होता है, आप कुछ बोल रहे होते हैं पर मुंह के बाहर वो आवाज नहीं आता, इसको मध्यमा कहते हैं, जो साइलेंट टॉकिंग जिसको आप कहते हैं। पश्यंती और थोड़ा नीचे शटल लेवल पर जो आपकी थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कभी कभी होता है ना आप खोए हुए होते हैं, जो विचार चल रहा होता है, आप अपने से बात कर रहे होते हैं पर अपने से बात कर रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, मन ही मन वो थॉट प्रोसेस में चल रहा होता है, उसको कहते हैं पश्यंती। और परा जब आप अपनी माइंड या सेंसेस किसी को भी यूज नहीं करते हैं, जब कोई ऋषि या जब आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन एनलाइटनमेंट स्टेट में आ जाता है, रियलाइजेशन स्टेट में, जहां उसकी किसी भी तरह का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, उस लेवल में जो रियलाइजेशन होता है, उस रियलाइजेशन की जो, उसी का नाम है परा, वो भी लैंग्वेज की एक स्टेट है। तो इसमें तो तीन तो आप फील कर सकते हो, अब मान भी जाओगे इजीली। हाँ जी मैं बोलता हूं, कभी कभी मैं विस्परिंग करता हूं या साइलेंट टॉकिंग करता हूं, ये भी मान गए। फिर आप कभी कभी ये भी मान जाएंगे कि हाँ मैं दिमाग में कुछ विचार आते रहते हैं, परा वाले पर आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्यों? इनविजिबल है ये सबकी। जो लोग उस स्टेट में जाते हैं, रियलाइज करते हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं वो स्टेट क्या है। इसी तरह हमारे लाइफ भी चार स्टेट्स में है। आप जगे हुए हो, बात करते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, भागते हो, कुछ भी करते हो, ये जगी हुई अवस्था है, जागृत अवस्था। फिर आप सो जाते हो, जब आपकी सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, बॉडी रिलैक्स्ड हो जाता है पर माइंड काम करता है, उसको हम कहते हैं स्वप्नावस्था, द स्टेट ऑफ ड्रीम। ये ड्रीम क्या चीज होती है? जब आप सो जाते हो, सोने का मतलब जब आपकी सेंसेस काम नहीं करते, इंद्रियां काम नहीं करते पर मन अभी भी काम करता है। आपको पता है आपका ज्ञान, आप कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन आप लेते हैं कैसे लेते हैं, उसमें चार चीजें साइमल्टेनियसली काम करना जरूरी है। एक तो आपकी सेंस, सपोज आप किसी चीज को देख रहे हो, मेरी आंख सामने पिक्चर है, पिक्चर ऑब्जेक्ट है, मेरा सेंस उससे कनेक्टेड है, सेंस के साथ माइंड कनेक्टेड होना चाहिए। माइंड अगर भूख लग रहा है, मेरा मन भूख में है तो पिक्चर सामने है तो भी नहीं दिखेगा, माइंड सेंसेस से कनेक्टेड हो। और आपकी बुद्धि विजडम ठीक ठीक होना चाहिए कि आप इसको रिकॉग्नाइज करो, हाँ ये पिक्चर है। अगर आप इल्यूजन में हो या किसी दूसरे दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप पिक्चर भी आपको भूत लगेगा, है ना। तो ये जब कनेक्टेड होते हैं तब आपको ज्ञान होता है। अब जब सेंसेस आपका सो गया तो माइंड की सारा सारा जो नॉलेज प्रोसेस करने का काम सेंसेस के द्वारा होता है। जब आप ड्रीम स्टेट में मतलब हल्की नींद में होते हैं तो आपकी सेंसेस काम नहीं करते, तो माइंड क्या करता है, जैसे गाय खाने के बाद ना रात को जो सोती है जुगाली करती है, जो खाया हुआ है उसको थोड़ा मुंह में लाकर चबाती रहती है, इसी तरह सेंसेस के द्वारा जो कुछ ज्ञान आपके ऑलरेडी ले लिया जा चुका है, माइंड में स्टोर्ड है, माइंड उन स्टोर्ड नॉलेज को दोबारा उनको जुगाली करता रहता है। वो है स्वप्न, ड्रीम। आप सपने में क्या देखते हो, सपने में आधा कुछ रियलिटी होती है कुछ अनरियल होता है। आपने सपने में देखा कि आप घोड़े घोड़े में बैठ के उड़ रहे हो, अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गए हो। बोला सेंसेस आपकी जब खुला आंख में था, जब सब कुछ ठीक था, आप सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, जो भी ज्ञान गया, जो भी थॉट गया, जो भी एक्सपीरियंस गया, या जो भी विशेष है, वो सब मिलजुल करके एक नया फॉर्म बनाता है, उसी को हम ड्रीम स्टेट कहते हैं। तीसरी स्टेट होती है सुषुप्ति, जहां आप सोए हुए होते हो गाढ़ नींद में, ना मन काम करता है ना इंद्रियां काम करती है, बोलने पर भी उठते नहीं हो, हिलाने पर भी नहीं उठते हो, घर में आवाज दो तो भी नहीं उठते हो, सुषुप्ति। तो जो सुबह आप उठते हो तो मजा आ गया, कैसे क्या मजा आया, कि बड़ी बढ़िया नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला, बारिश इतनी हो गई रात को। अच्छा, पड़ोसी के घर में शादी थी, ड्रम बज रहा था, अच्छा ये तो पता ही नहीं चला, दुनिया में कुछ पता ना चला, ये पता ना चलने पर भी आपको खुशी मिली। सुबह उठ के आप क्या बोलते हो, मजा आ गया, सुखम अहम अस्वप्स्वम न किंचित अवेदिशम, सुख से सोया, बड़े मजे से सोया। मजा कैसे पता चला, तू तो सोया हुआ था, सोते हुए कोई मजा का पता लगता है क्या, क्यों कुछ पता नहीं चला। तो कहते हैं जब आपकी सेंसेस एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता है, आपका माइंड दुनिया से कनेक्टेड नहीं होता है, तो आपकी आत्मा अकेले बना रहता है। वो अकेले बना रहना अपने आप ही एंजॉयबल होता है, वो सुषुप्ति अवस्था है। आप ये तीन अवस्था तो मान जाओगे सीधी सीधी, क्योंकि विजिबल है। जो चौथी अवस्था वो इनविजिबल है, जो ओमकार की चौथा लाइन डिफाइन करता है, और वो क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जब आप अपने आप को रियलाइज कर जाते हो, जिस दिन सेंसेस से परे, माइंड से परे, इंटेलेक्ट से परे, जब आप खुद को खुद रियलाइज करते हो, द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, वो रियलाइजेशन के बाद जब आपकी बॉडी आपसे छूट जाता है, मर जाते हो, तो आप उस परमानंद में विलीन हो जाते हो। वो आत्मा का फोर्थ स्टेज है, वो मिलता है मरने के बाद। मरने के बाद सबको नहीं मिलता, मरने के बाद वो दूसरा शरीर मिलता है, वो मरने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, ये भी आप मान जाओगे, क्योंकि वो लॉजिकली आपको समझा दिया जाएगा। पर मरने के बाद एक ऐसा स्टेट आता है जब आप पैदा नहीं होते हो, मुक्त हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, ना अब आपको जगे हुए स्टेट है, ना आप ड्रीम स्टेट है, ना आपकी डीप स्लीप स्टेट है, कुछ भी नहीं, या मानोगे नहीं आसानी से, वो इनविजिबल है, उसको कहते हैं मुक्तावस्था। ओमकार, और भी बहुत सारी अवस्थाओं का डिस्कशन अगले बार करेंगे, आज के लिए।